हन्नूर से पत्र आया है। पम्मी, प्रमिला और इंदिरा की शादियां तय हुई। अक्कल कोट में एक ही घर में दोनों को दिया गया है। दोनों बहनें अब एक दूसरे की जेठानियों देवरानियां बनकर ससुराल में जाएंगी। मुझे खुशी हुई कि चलो दोनों की शादियां तय हुई। इंदिरा दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी और पम्मी, प्रमिला 8-9 वर्ष की थी। इसी उम्र में वनी का विवाह होकर टूट गया था। मुझे नानी और रामबाप का किस्सा याद आ रहा है। नानी और दादी ने अपने लड़के और लड़कियों की शादियां जब दोनों बहुएं गर्भवती थीं तभी तय कर दी थी। एक के लड़का दूसरी की लड़की हो जाए तो यह शादी करनी ही पड़ती थी। दोनों को लड़के या लड़कियां हो जाएं तो विवाह का इकरारनामा टूट जाता था। गर्भवती स्त्री के पेट को कुमकुम लगाकर विवाह संपन्न करने की यह पद्धति बड़ी ही विचित्र और घिनौनी लगती है। पम्मी और इंदिरा की सास मालन, यह मुसलमान औरत, स्वामी ड्राइवर उस पर फिदा हो गया। स्वामी ड्राइवर ने बड़ी कोशिश से मालन को उसके पूर्व पति से तलाक दिलवाया। स्वामी ड्राइवर लिंगायत। इस स्वामी से मालन के 2 लड़के हुए। एक गुरुसिद्ध, पम्मी का पति, 14-15 वर्ष का था। दूसरा बसवणा, इंदिरा का पति, 10-12 वर्ष का। मालन के मुसलमान पति से एक लड़की थी, चांदबी नामक। यह लड़की मजदूरी करके अपने शराबी पति का घर संभालती थी। स्वामी ड्राइवर की सोना नामक एक लड़की सोलापुर में वेश्या व्यवसाय करती है। पम्मी और इंदिरा की शादी निश्चित करते समय माँ मुसलमान और बाप लिंगायत कहा गया था, क्योंकि स्वामी ड्राइवर और हमारे काका दोनों लिंगायत। पर मसामा महार और मालन मुसलमान, मसामा मुसलमान से हुई हैं ऐसा कहा गया है। दादा को बाप के रूप में बताया गया, दादा तो मुसलमान था ही। शादी के तुरंत बाद कुछ कर्मकांड हेतु पम्मी इंदिरा को ससुराल अर्थात अक्कलकोट ले जाया गया। उनके साथ वनी भी थी। पम्मी इंदिरा की ससुराल के सम्मुख ही शराब का अड्डा था। शराब बेचने वाले मालिक में और वनी में दोस्ती हो गई। 2 दिन बाद वनी, पम्मी, इंदिरा वापस आए हमेशा के लिए, क्योंकि मसामा महार जाति की हैं, दलित हैं, इसका उन्हें पता चल गया था। नई नई शादी इस तरह टूट गई, गुड़िया की शादी की तरह। इंदिरा अब 3री में पढ़ रही थी और पम्मी जलावन इकट्ठे करती घूम रही थी। दोनों के माथे सफेद सफेद थे। अक्कलकोट में शराब बेचने वाला व्यक्ति वनी की ओर आकृष्ट हुआ था। उसने वनी का पता पूछ लिया था। उसका उपनाम था इंडे, जंगम। शराब, अफीम और गांजा बेचना, यही उसका व्यवसाय था। चाकू से खेलने वाला, अनेक बार जेल हो आया था। पुलिस की ब्लैक लिस्ट में उसका नाम था। पहली पत्नी का खून कर चुका था। आयु में वनी से काफी बड़ा। शराब के ग्राहक के रूप में वह हमारे घर आया। शराब पी, काका को पिलाई। नशे में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। काका तुलजापुर गए और इंडे के साथ वनी की शादी लगा कर आए। मैं बस्ती की चौपाल पर गया था। चौपाल पर मसरणा और अंकुशरणा, चमड़ा सीते बैठे थे। चन्नू पटेल की गाय का बछड़ा मर गया था। बछड़ा मर जाने के कारण गाय दूध नहीं दे रही थी। उसका वात्सल्य फूट के आ नहीं रही थी। बड़ी परेशानी थी। गाय दूध नहीं दे रही थी, गाय दूध दे, इसलिए बछड़े का प्रतिरूप तैयार किया जा रहा था। बछड़ा मर जाने के बाद उसका चमड़ा निकाल दिया जाता है, सुखाया जाता है। गाय का दूध रुक गया हो तो वह दूध दे, इसलिए अंकुशण्णा और मसण्णा दोनों उस मृत बछड़े के चमड़े को फिर से सी रहे थे। भीतर भूसा भरकर पैरों के स्थान पर लकड़ियां बांध गई थी। जैसे कोई थैला सिया जाता है वैसे प्रतिरूप सिया जा रहा था। ऊपर से बछड़े का चमड़ा, भीतर भूसा तथा लकड़ियां। इस प्रतिरूप को गाय के सामने खड़ा कर दिया जाता है। उसे देख गाय रंभाती है, प्रतिरूप को वात्सल्य से चाटती है और उसका वात्सल्य फूट पड़ता है। जानवरों तक में प्यार होता है, ममता होती है। गाय इस प्रतिरूप को बछड़ा समझकर प्यार करती है, पर बछड़े के स्थान पर होगा उसका प्रतिरूप निर्जीव। मनुष्य उसको फंसाकर दूध निकाल जाता है। धीरे धीरे गाय के सामने से प्रतिरूप निकाल दिया जाता है। मनुष्य भी एक ऐसा ही निर्जीव प्रतिरूप। किसी गर्भवती स्त्री का नवजात शिशु अगर मर जाए तो क्या उसे मृत शिशु की चमड़ी उधेड़ कर उसमें रूई और चिंदिया भरकर उसे चमड़े को फिर से सीकर और माँ के पास दूध के लिए सौंपा जा सकता है? ऐसा जब भी हो तभी शायद गाय के करुण स्वर को ये लोग समझ पाएंगे। परश्या, महाद्या, मारत्या, अशोक की शादियां हो गई हैं, प्रत्येक के बाल बच्चे हो गए हैं, चंपा की भी शादी हुई है। मेरे पीछे कितने मौसम चले गए, बह गए, चले जल गए। मनुष्यों का यह ऋतुचक्र, ऋतु संहार, भोंसले गुरुजी, गंगोड़ा गुरुजी अब थक गए हैं, मुल्ला गुरुजी कुछ ही दिनों में रिटायर हो जाएंगे। क्या काल चक्र को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है? मनुष्य नाम का एक पेड़, पेड़ पर उम्र रूपी पत्ते, दिन ब दिन मुरझाने वाले मृत्यु रूपी आंधी में मनुष्य रूपी पेड़ भी टूट जाएगा। सातु बाप के वंश की अंतिम उत्तराधिकारी संता माएं अब काफी थक गई हैं, दादा भी। मनुष्य के जन्म के बाद शमशान उसे छूने के लिए उसका सतत पीछा करता रहता है। मृत्यु का यह खेल अपने पर न उल्टे, इसलिए मनुष्य भी जीवन मैदान में सतत दौड़ता रहता है, गिरता रहता है। मारुति की माँ हौसा गुजर गई है, लखू बाप के पूरे बाल सफेद हो गए हैं। उसे बीड़ी के लिए मैंने 10 पैसे दिए, उसने भरपूर आशीर्वाद दिया। लखू बाप अब भानामती क्यों नहीं करता? भानामती द्वारा अमीरों की तिजोरी के पैसे अपनी झोपड़ी में क्यों नहीं ला सकता? क्यों नहीं आदेश देता किसी भगवान को कि वे शोषक सेठों की गर्दनें तोड़ दे? उसकी मंत्र विद्या उसे भूखा क्यों मारती है? दुर्वासा जब अपने लड़के को लेकर मुझे बुलाने के लिए आया तब मुझे काफी आश्चर्य लगा। मैंने सोचा संभवतः इसने दूसरी शादी की होगी, 5 वर्ष पूर्व की यादें ताजा हो थी। दुर्वासा का विवाह उसकी बहन की लड़की के साथ हुआ था। दोनों कुछ महीनों तक हंसते खेलते रहे, परंतु कुछ ही दिनों बाद दुर्वासा की पत्नी पर भीमांडा नामक सेठ साहूकार ने कब्जा कर लिया। गांव और बस्ती में हो हल्ला हुआ। दुर्वासा ने अपनी पत्नी और भीमांडा को रंगे हाथ पकड़ लिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसी समय अपनी बहन को संदेशा भेजा, तेरी लड़की कुएं में गिरकर मर गई है। दुर्वासा की बहन और जीजा जी रोते हुए आए तो उसने दरवाजा खोलकर असलियत बतला दी। उस वक्त दुर्वासा अपनी पत्नी का कान, स्तन और नाक काटने के लिए चाकू लिए तैयार था। सगी बहन की वह लड़की पर सबने बीच बचाव किया। दुर्वासा गुस्से से थरथरा रहा था। इस घटना को आज 5 वर्ष हो गए। दुर्वासा की पत्नी ने भी मुझे संदेशा भेजा। मैं आश्चर्यचकित हुआ, दुर्वासा अब अपनी पत्नी के साथ मजे में जी रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं घर की ओर निकला तो लड़ाई झगड़े की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी। नागी रो रही थी, मसामा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। चंदू चुपचाप बैठा था। चंदू ने दूसरी शादी की थी पर वह मान नहीं रहा था। मसामा चिढ़ गई थी। नागी का भविष्यकाल उसके सामने था। मसामा चंदू से कड़े स्वर में पूछ रही थी, वह खामोश था। अंत में मसामा ने कहा, अरे वह तलवार इधर ले आ, देखें कितनी देर सच को छिपाता है। नागी रो रही थी। चंदू आखिर मान गया कि उसने शादी की है। मैं बाहर से ही सब सुन रहा था, भीतर जा नहीं सका, चुपचाप वापस आ गया। दादा, संता माए, मैं खाना खा रहे थे। इतने में गोधली समाज का पांडुरंग भागता आया। उसकी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा था। संता माए ने थाली सरका दी और प्रसूति के लिए निकल गई। छुट्टियां खत्म हो रही थी। पत्नी कुसुम प्रसूति के लिए बारशी रुकी थी, उसके यहाँ भी जाना था। लौटते समय सोलापुर में एक दिन रुकने की इच्छा थी। मैं शाम की बस से निकलने की तैयारी करने लगा। मैं लौटने वाला था इसलिए सब इकट्ठे हुए। संता माए, दादा, काका, मसामा, नागू, चंदू, वनमाला, प्रमिला, सुनंदा, श्रीकांत, इंदिरा सभी विदाई के लिए इकट्ठे हो गए। बस में देर थी। हम सब में केवल चंदा माँ नहीं थी, उनका अभाव हम सब तीव्रता से महसूस कर रहे थे। बस आई, मैं बैठ गया। दादा मेरे पास आए, सोच समझ कर पैसा खर्च कर, उन्होंने कहा। कंडक्टर के पास गए, मेरा नाती है, टेलीफोन में साहब है। उन्होंने कंडक्टर से कहा। कंडक्टर ने सीटी दी, बस चली। मैं क्षण भर घर से दूर दूर जा रहा था। मैं क्षण क्षण घर से दूर दूर जा रहा था। सोलापुर उतर गया, एक पुराने दोस्त से भेंट हो गई। उसने होटल में चाय पिलाई, घर चलने का आग्रह किया। मैं उसके आग्रह को टाल नहीं सका। माने मेरा मित्र देहात का भयावह दरिद्रता से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचा है। अब वह किसी बैंक में नौकरी कर रहा है। उसके आचार विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अपनी माँ को वह गांव से शहर ले आया है। उसकी शादी भी हुई है। झोपड़ी में रहने वाला यह आदमी आज प्रस्थापित हो गया है। थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी उसकी पत्नी, घर काफी ढंग से उसने सजाया है। मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसका उसे कुछ पता नहीं था। वह जन्म से दलित था, पर दलित साहित्य उसने पढ़ा नहीं था। माने की माँ बड़े संकोच से मुझसे बात कर रही थी। माने की यह माँ फटी पुरानी साड़ी पहने गोबर उपलियां इकट्ठा करती घूमती, 9 गज की साड़ी पहनने वाले हीरा मावशी 6 गज साड़ी पहने खड़ी थी, चोली की जगह ब्लाउज पहने थी, केश रचना भी बदल चुकी थी। माने अब साहब हो चुका था। साहब की माँ को साहब की माँ की तरह ही रखना चाहिए ना। सवेरे मैं बार से निकला, निकलते समय नजर अचानक लॉज पर गई। एक नया विश्व दर्शन हो रहा था। चंद्या और उसकी पत्नी लॉज में रुके थे। इसी शहर में चंद्या की 2 बहनें हैं, पर वह झोपड़ियों में रहती हैं। चंद्या के पास अब पैसे थे, जब पैसे नहीं थे तब की बात भिन्न थी। अब नौकरी है, सुशिक्षित पत्नी है, अब वह मध्यवर्गीय हो चुका है। अब वह लॉज पर ही उतरेगा, बहन के पास क्यों जाएगा। बारशी ने बस पकड़ी, लातूर जाना जरूरी था। छुट्टियां खत्म हो रही थी, उनके समस्याओं से मैं घिर रहा था। आंधी की तरह घूम रहा था अपने भी बीच। मेरे साथ नीली टोपी वाला एक प्रौढ़ व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था, शायद वह रिपब्लिकन वाला हो। उसे बैठने के लिए मैंने जगह दी, संभवतः मेरी जाति को वह भांप गया था। बारशी स्टैंड पर ही पता चला कि कुसुम के लड़का हुआ है। लड़के का नाम अनार्य रखने का निश्चय मैं पहले ही कर चुका था। छुट्टियां बढ़ा ली, हनूर को पत्र द्वारा सूचित किया। उम्र के 27वें वर्ष में मैं अनेक जिम्मेदारियां लिए जी रहा हूँ। 18 वर्ष की आयु के पूर्व ही पत्नी 3 बार गर्भवती हुई। ये खेल चल रहा है सी शौ का। जीवन की भी ऐसी ही स्थिति है, चढ़ाव उतार। यह कितनी ऊंचाई की ऊपर देखूं कि सिर पर की टोपी नीचे गिर जाती है, और यह कितनी गहराई की नीचे देखूं कि आंखों में अंधेरा छा जाता है। आज रमजान का ईद है, दादा की ईद। दादा ने बुधवार के बाजार में शर्ट टोपी खरीदी होगी उधार, मस्जिद में नमाज पढ़ने गया होगा। संता माँ किसी मुसलमान के घर शूरखुमा मांगने गई होंगी। दादा के मृत्यु के बाद उनका जनाजा कौन उठाएगा, मुसलमान कैसे आएंगे, दादा का क्रियाक्रम क्या मुसलमान करेंगे, फिर दादा को कहाँ दफनाया जाएगा, दादा के प्रीत का क्या होगा, उनकी शमशान भूमि कहाँ है। संता माँ मसा माँ की मृत्यु के बाद उनके क्रियाकर्म के लिए क्या लोग इकट्ठे होंगे। व्यवस्था का यह चक्रव्यूह ऐसा क्यों रचा गया है, इस नीति अनीति को किसने बनाया है, क्यों बनाया है। मेरे जन्म को ही अगर अनैतिक घोषित किया गया हो तो मैं किन नीतियों का पालन करूं।